और कॉलेज वाले कितने हैं? कॉलेज वाले माशाल्लाह, और इंजीनियरिंग वाले कितने हैं? इंजीनियरिंग वाले अच्छा, एग्ज़ाम चल रही है इंजीनियरिंग वाले। और आईटीआई वाले कितने हैं? अच्छा, मेडिकल के बच्चे हैं? मेडिकल के कोई मेडिकल के बच्चे हैं? नहीं। और कौन से हैं? और कोई शोबे में पढ़ने वाले हैं? अच्छी बात, आप तो माशाल्लाह हर साल आते हो और हर साल आप हजरात की एक मजलिस होती है, उसमें आप हजरात के साथ आप हजरात की थोड़ी सी कारदारी होती है और थोड़ी सी बात का कहना सुनना होता है। आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है भाई? आपको अगर खाली दीन की बात सुनानी होती तो पंडाल में अभी कौन सी बात हो रही है? अरे बोलो भाई, दीन की। तो आपको क्या कहते हैं कि आप भी वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और वहीं बात सुन लें? अगर खाली आप लोगों को दीन की बात सुनानी होती तो इतना हो जाता, बोलो हो जाता? नहीं हो जाता। लेकिन आप हजरात को हर साल मुस्तकिल अलग बिठाते हैं और मुस्तकिल आप हजरात की कुछ कारदारी सुनी जाती है और फिर आप हजरात से थोड़ी सी बात होती है, तो आपने कभी सोचा कि आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? है भाई, सोचा आपने? नहीं सोचा। अच्छा, सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? हाँ भाई, सोचना चाहिए। असल बुनियादी बात यह है, आप हजरात के साथ ये इसलिए होता है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दीन जो है वो हमदर्दी वका दीन है। कौन सा दीन है? हमारे नबी इसका इजहार करते थे कि मेरे दीन में हमदर्दी है, अद्दीन व नसीहा। फिर लोग पूछते थे किसके लिए, तो फरमाते थे कि लिल्लाहि वलि रसूलिहि वलि उम्मतिल मुस्लिमीन वलि अइम्मतिहिम, कि इस उम्मत के जितने तबके हैं वो सारे तबकों के लिए हमदर्दी है, ऐसा फरमाते थे। पढ़े लिखे, अनपढ़, शहरी, देहाती, छोटे बड़े, सब के लिए हमदर्दी। तो हमारे दीन में कुछ चीज़ें वो है कि जिसमें सब लोग शरीक है, ईमान सबके लिए बराबर है, बराबर, उसमें कोई आगे पीछे नहीं। नमाज का जो बालिग हो जाए उन पर है, सही गलत, जो नाबालिग है उन पर फ़र्ज नहीं। हज जो मालदार है उन पर फ़र्ज है। ज़कात का जो मालदार है उन पर फ़र्ज है, जो नहीं उन पर नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कुछ लोगों पर है कुछ लोगों पर नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें आप बच्चों से मुतालिक होती है, क्या आप अभी बच्चे हैं? लेकिन कल आप बच्चे नहीं होंगे, अभी आप कौन हो बोलो? बच्चे हो। लेकिन आइंदा कल आप बच्चे नहीं होंगे तो कौन हो जाओगे? कल बड़े हो जाओगे, अभी आप छोड़ हो, कल क्या होंगे? झाड़ हो जाओगे। छोड़ जैसा होगा ऐसा उसका झाड़ बनेगा। छोड़ सीधा है तो उसका झाड़ भी सीधा है, और छोड़ टेढ़ा हो गया तो वो झाड़ भी टेढ़ा हो जाएगा। छोड़ अच्छे बीज का डाला गया तो झाड़ भी कैसा उगेगा? उसमें से अच्छे ही फल आएंगे। और गलत हो गया तो आप जैसे बच्चे समाज में और बहुत सारे हैं, वो बच्चे और आप बच्चों में भी फिर फर्क है कि आप आगे पढ़कर बहुत अच्छे बड़े बनोगे। छोड़ झाड़ होता है ना, फेरिया व्यापारी होता है, कली फूल बन जाती है। तो आप आगे जाकर कौम के जिम्मेदार बनोगे, समाज के, सोसाइटी के बड़े बनोगे। अक्सर लोग अनपढ़ होते हैं, उनमें कुछ ही लोग पढ़े होते हैं। समाज के लोग उन पढ़े लिखे लोगों से पूछते हैं, उनको अपना बड़ा बनाते हैं। हाँ, हमने हमारे वहाँ देखा, हमारे अक्सर मस्जिदों के मुतवल्ली एजुकेटेड लोग हैं, मास्टर लोग, बल्कि अक्सर मदरसों के जिम्मेदार भी वही है, ट्रस्टी वही है। क्यों? कि उस ज़माने में और कोई तो होता नहीं था, यही लोग स्कूलें भी चलाते थे, यही लोग मस्जिदें भी चलाते थे, यही लोग मदरसे भी चलाते थे, सारा यही लोग चलाते थे। तो अल्लाह पाक आपको बड़ा बनाने वाला है, یہ مبارک دین کے محنت کے راستے سے آپ حضرات کے متعلق اس بات سوچی جاتی ہے کہ یہ ہمارے ایسے اچھے بڑے بنے آگے جا کر کہ جو ہزاروں کو اچھا بنانے والے بن جائیں، قسم کو بولو ہزاروں کو، اس لیے کہ آپ جب بڑے بن کر بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک استاد ہے، ٹیچر، 20-22 سال کی عمر میں اس کی پڑھائی پوری ہو جائے گی، برابر ہے، پھر اس کے بعد کہ وہ 60 سال تک پڑھائے گا، کتنے سال تک، تو کتنے سال اس کو پڑھانے کا موقع ملا، 35-38 سال تک اس کو پڑھانے کا موقع ملے گا۔ اگر یہ استاد، اس کو اپنے بچپن میں اچھی وچار دھارا مل گئی، اچھی سوچ مل گئی، اچھی زندگی مل گئی، تو یہ 35 سال تک بچوں کا گھڑتر کرے گا۔ کیا کرے گا بولو، ذرا زور سے بولو، گھڑتر کرے گا۔ دیکھنے میں اتنا ہوگا کہ اس استاد نے اس بچوں کا گھڑتر کیا، خالی گھڑتر اس نے نہیں کیا، اس نے اپنی دنیا بھی اچھی بنا لی اور اس نے اپنی آخرت بھی اچھی بنا لی۔ کیسے؟ کیسے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ نے بچوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو بچے آپ کو بھولیں گے نہیں اپنی زندگی بھر۔ کیا نہیں بھولیں گے بولو؟ وہ آپ کے اس احسان کو زندگی بھر کیا نہیں کریں گے، بھولیں گے نہیں۔ آخرت کیسے بنی؟ کہ یہ بچوں کو آپ نے اچھا بنایا، تو آپ ایک طرف بوڑھے ہوتے چلے جاؤ گے، وہ بچے بڑے ہوتے چلے جائیں گے، آپ تو بوڑھے ہوں گے، وہ بچے کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے۔ ان بچوں کو آپ نے اچھا بنایا، پھر یہ بچے جو آپ کے ہاتھ پر پروان چڑھیں گے وہ قوم کے ذمہ دار بنیں گے، سماج اور سوسائٹی کے بڑے بنیں گے، وہ قوم کو اچھے رخ پر لے کر جائیں گے، جس سے ان کی دنیا بھی اچھی ہو، ان سے آخرت بھی ان کی اچھی ہو۔ اس کا ذریعہ آپ بنے ہو، اس کا ذریعہ کون بنے؟ آپ۔ کیوں آپ بنے؟ اس لیے کہ آپ اچھے تھے، اس لیے کہ آپ اچھے تھے۔ آپ اچھے ہو تو آپ منزل پر گاڑی لے جاؤ گے۔ کل میں خبریں پڑھ رہا تھا، تو جب آدمی اچھا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، کل میں خبریں پڑھ رہا تھا تو دہلی سے ایک جہاز کو جانا تھا حیدرآباد، تو وہ جہاز کا حیدرآباد سے دہلی آنا تھا، تو تاخیر ہوتی گئی تاخیر ہوتی گئی، تو سب لوگ پریشان ہوئے، تو ایک پیسنجر اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے میں اتنی استعداد ہے کہ میں اس جہاز کو چلا کر دلی لے جاؤں۔ تو اس کو لوگوں نے چیک کیا، وہاں کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے چیک کیا اور اس کو اجازت دے دی کہ اچھی بات ہے آپ جہاز چلاؤ۔ تو وہ جہاز اس نے چلائی اور چلا کر دہلی لے کر آیا۔ یہ کیوں لے کر آیا، کیوں لے کر آیا؟ اس لیے کہ اس نے اس کی تعلیم لے لی تھی، تو اتنے سارے لوگوں کے لیے خیر کا وہ ذریعہ بنا اور سب کو صحیح سلامت منزل پر پہنچایا۔ تو اچھا، یہ سارے لوگ اس کو دعا دیں گے یا بد دعا دیں گے؟ دعا دیں گے۔ دنیا میں بہت سارے کام دعاؤں سے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر کام دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں بولو؟ دعاؤں سے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک آپ کو مثال دی کہ بچوں اور وہ بچے کے والدین آپ کو دعا دیں گے، اس سے ہمارے بچے جو ہوں گے ان کو بھی وہ دعا لگے گی، ہمیں لگے گی، ہماری نسلوں کو دعا لگے گی۔ مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا بچہ ہے، وہ اچھی تربیت اس کے ہو گئی، اچھا پروان چڑھا، وہ اچھا ڈاکٹر بنا۔ اب وہ جوان بچہ ہوگا، لیکن سماج کے سارے لوگ اس کو ایک عزت کی نگاہ سے بولیں گے، بولے بولیں گے نہیں بولیں گے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، عظمت کی نگاہ سے اس کو بلائیں گے۔ اگر یہ اچھا پروان چڑھا ہے تو اس کے پاس آنے والی جو بیمار ہوں گے، آنے والے لوگ، یہ ان کا خیرخواہ بن کر ان کا علاج کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی، بولو ہوگا نہیں ہوگا، ہمدرد بن کر، خیرخواہ بن کر، تو اللہ پاک ان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں خیرخواہی ہے تو وہ اس کی دین کی بھی فکر کرے گا، حاجی صاحب کیسے ہو، خیریت ہے، دوائی بھی دے گا اور اس کے آخرت بنے اس کی فکر کرے گا۔ کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو متوجہ کرے گا، پھر کیا ہوگا کہ یہ اس کے پاس جیسے اپنا جسمانی علاج ان کا ہو گیا، ایسے اس کے روحانی علاج کے کرنے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ جس دن یہ ڈاکٹر مرے گا، اس کے پیچھے رونے والے ہزاروں لوگ ہوں گے کہ ہمارا ہمدرد اور ہمارا خیرخواہ دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے میرے ساتھ چلے میں، تو مجھے بعد میں ملے، میں نے کہا کیا ہوا، تمہاری میڈیکل کا کیا حال ہے؟ وہ میڈیکل چلاتے تھے۔ کہا میں نے مولانا میڈیکل بند کر دی تھی لیکن پھر چالو کرنی پڑی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں چالو کرنی پڑی؟ لوناوڑا کے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اس لیے ایسا ہوا कि मैंने मेडिकल बंद कर दी, मैं जिस मार्केट में हूँ वहाँ सब मेडिकल ही मेडिकल है, मेडिकल स्टोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तो तबलीग वाला आदमी हूँ, तो गश में भी, इन मुलाकातों में भी, इन मशवरे में भी, यहाँ भी वहाँ भी सब जगह मशगूल रहा हूँ, तो आगे पीछे होता था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने बंद कर दिया है। लेकिन जब मेरी चालू थी दुकान, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम कस्टमर आते थे, वो मेरी दुकान बंद हो तो वापस चले जाना, नमाज का वक्त में मैं बंद करके जाऊँ तो दूसरे जगह से लेवे नहीं, इंतज़ार कर। मैं आकर इनसे पूछता था कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, इतनी सारी मेडिकलें खुली हुई है, कहीं से भी सामान ले लो। वो कहते थे ना ना, अगर हम सामान लेंगे दवाई तो आप ही की दुकान से लेंगे। तो क्यों ऐसा तुम करते हो कि हम आपके दुकान से जब सामान लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो हमें तंदुरुस्ती मिल जाती है, हमें सेहत मिल जाती है। मैंने कहा आप क्या करते हो, कि मैं तो, मेरा तो तबीयत ही होती थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, बस मैं चला रहा था, मैं कोशिश करता हूँ लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ, और जो मेरे पास से दवाइयाँ ले जाते हैं उनके लिए मैं दुआ भी करता हूँ। उसने क्या कहा, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। अब जो आदमी ऐसा हमदर्द बनकर चले, तो बताओ उसकी दुआ अल्लाह कबूल करेंगे नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने उसकी ऐसी दुआ कबूल की कि उनको सेहत दी और इसको कस्टमर दिए, उसको तो क्या मिली, और मार्केट में इसको क्या मिले, कस्टमर मिले। मुझे डॉक्टर मिले, कहने लगे मेरे पास जितने लोग इलाज के लिए आते हैं मैं सब के लिए दवा करता हूँ। अच्छा वो DHMS है, कौन है DHMS, मैं भी उन्हीं से दवा करवाता हूँ। तो पता नहीं मुकद्दर के बाद मैं कहीं भी सफ़र में होता हूँ, मैं भाई मुझे थोड़ी सी ये महसूस हो रहा है, वो बेचारा ऐसे ही SMS कर देता है, मैं गोली ले लेता हूँ, अल्लाह सेहत दे देते हैं। तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले उससे कहा, सर्दी थोड़ी हुई थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर तो बहुत सारे मिलते हैं सब जगह पर, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों की सेहत आपके हाथ में रख दिया ऐसा लग रहा है। तो कहने लगे सही बात तो मौलवी साहब ये है कि मुझसे जो दवाई लेते हैं मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ। तो किताबों में आता है एक मुसलमान मुसलमान के पीठ के पीछे दुआ करे वही कबूल है, मुसलमान मुसलमान के लिए उसके पीठ के पीछे दुआ करे वो कबूल होती है। तो यूं ही मुसलमान की दुआ कबूल हो, और फिर कोई हमदर्द बनकर खैरखा बनकर दुआ करे तो और उसको धक्का लगेगा कि डॉक्टर में ये कहाँ से पैदा हुआ। तो उसको नेकी बचपन में मिल गई, क्या मिल गई बोलो, नेकी मिल गई। तो अब ऐसों के लिए हजारों लोग दुआ करने वाले होते, वो डॉक्टर कुछ जिनके लिए करते हैं वो सारे इनके लिए दुआ करते हैं, उनके अच्छे बोल बोलते हैं। आप हजरात भी उस फील्ड में हो, आप भी आके जाकर ऐसे बनने वाले हो। तो हम ये चाहते थे इस मुबारक मेहनत के रास्ते से कि अल्लाह आपको भी ऐसे बना दें कि आपके लिए हजारों रोने वाले तैयार हो जाएं, कैसे बोलो, और आपके लिए हजारों दुआएं करने वाले तैयार हो जाएं। हम भी ये चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाते हैं, और बुलाकर आपकी पढ़ाई का जमाना, चूँकि स्कूल के माहौल में होते हो, और आमतौर से स्कूल का माहौल कौन सा माहौल होता है, दीनदारी का या गफलत का, अरे बोलो भाई गफलत का। तो गफलत के माहौल में आप हजरात हो, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि संभले हुए हो। देखो आप सब ऐसे माशाल्लाह, अगर आप हजरात संभले हुए ना होते तो आप इज्तिमा में थोड़ी आते, बोलो इज्तिमा में आते, आप इज्तिमा में ना आते, ये मजलिस में ना आते, आप माशाल्लाह इज्तिमा में भी आते हो, आप स्कूल के माहौल में अपने आप को संभाल कर जी रहे हो, वरना इस गफलत के माहौल में बहुत बहुत कम संभल पाते हैं, और बेचारे वो अपने आप को बच्चे समझते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो ये आज़ाद फील्ड है, आज़ाद माहौल है, जो करना है करो, ऐसा समझते हैं। लेकिन हकीकत दूसरी है भाई। हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि जो बच्चा बालिग हो जाए उसका अच्छा और बुरा सब नोट होता है, वो अच्छा करेगा वो भी और वो बुरा करेगा वो भी। अब ये बच्चा तो ये समझता है कि मुझे कौन पूछने वाला है, अब्बा पैसे देते हैं, अब्बा खर्चा देते हैं, जो मस्ती मज़े कर रहे हैं करो। अब ये बच्चा बालिग हो गया, खुदा न करे इससे अब चूकें होगी, भूलें होगी, तो वो सारी उसके नामा अमल में लिखी जाएगी। अब जब वो बड़ा होगा तो उसको बेचारे को पता भी नहीं होगा उसकी ज़िंदगी की वो की हुई भूलें, और उसको बढ़ती उसका बढ़ता आएगा, बाबा जोड़ा आएगा, वो बेचारा सर पकड़ कर बैठ जाएगा कि मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मैंने क्या किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन उसको बेचारे को कोई बताने वाला नहीं होगा कि भाई जब तो बालिग हो गया था, तो बच्चा था, तूने जो गलतियाँ जो चुके हैं और जो भूलें की थी वो तेरे नामा अमल में सारी लिखी जा चुकी, सब जमा हुई है, तू तो उसको भूल गया लेकिन अल्लाह के फरिश्ते नहीं भूले। अब उस वक्त तेरे बैट पर बॉल आई थी, अब और किसी के बैट पर तेरी बॉल आई है, अब वो खेल रहा है, पहले तू खेल रहा था, अब तुझसे तेरे बच्चे खेल रहे हैं, तुझसे तेरे कस्टमर खेल रहे हैं, अब अल्लाह पाक तुझे हिसाब दाव में ले रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं मैं लोगों को ढील दे देता हूँ, वह उमले लहुम, और जब उनको ज़रूरत होती है फिर अल्लाह रस्से खींचते हैं, इन कैदी मतीन। आपने किताब में नहीं पढ़ा, बाज़े लोगों को अल्लाह पाक उस वक्त साथ छोड़ देते हैं जब उनको साथ की ज़रूरत होती है। आपने पढ़ा है इन किताब में फजल सदकात में, अल्लाह पाक उस वक्त मदद से हाथ रोक लेते हैं जब उनको मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कौन समझाएगा बचपन में हमको, हमको बचपन में ये बातें कोई नहीं समझाता। हद तो अगले ज़माने में ये होता था कि माँ बाप अपने बच्चों को ये बातें घर में समझाते थे, वडील घर के समझाते थे, अब वो माहौल ख़त्म हो गया। लेकिन ये हुजूर की मेहनत के रास्ते से कोशिश की जाती है कि एक एक तक ये पहुँचा जाए और हर लोगों को ये बातें समझाई जाए कि भाई अपने बचपन में जो स्लिप खा गया वो पचपन तक खड़ा नहीं हो सकेगा, तो हमारा बचपन भी संभल जाए, हमारे स्कूल की फ़िज़ा भी संभल जाए। इसके लिए हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ें और अच्छे से अच्छे बने, और अच्छे बच्चे बन अच्छे बनकर परवान ये चढ़ें, ये उसकी फ़िक्र दिलाने की ये मेहनत है। इसलिए आप हजरात को ये बात कहते हैं कि भाई आपका ये मशगला पढ़ने का मशगला है। कौन सा मशगला? अरे बोलो कौन सा मशगला है? पढ़ने का मशगला। तो उसमें अच्छे से अच्छी जी लगाकर अच्छे से अच्छा पढ़ना है ताकि अच्छे से अच्छा बनो, लेकिन उसमें थोड़ी सी फिक्र इस तबलीग की मेहनत के साथ जोड़कर भी हो जाए ताकि तुम संभले रहो। अपने खेती उगाते हैं, खेती तो खेती उगाते हैं लेकिन उसकी बाड़ बना देते हैं। क्यों भाई? अरे भाई बाड़ बना देते नहीं ताकि कोई जानवर ना घुस जाए, हमारी खेती ना खा जाए। तो ये कॉलेजों की जो फ़िज़ा है, स्कूलों की फ़िज़ा है, उसमें इन हमारे बच्चों को जरासीम ना खा जाएँ। कौन ना खा जाएँ बोला? जरासीम, वरना जरासीम पड़ जाते हैं तो वो चीज़ों को खा जाते हैं। आपने देखा खेती में कीड़े पड़े तो किसको खा जाएंगे? अरे बोलो, अनाज को। कपड़े का कीड़ा किसको खा जाएगा? कपड़े को। और अनाज का कीड़ा? अनाज को। और लकड़ी का कीड़ा? लकड़ी को। ये उधर ही खा जाती है कैसे? और इंसानों में जरासीम पड़ जाते हैं तो इंसानों को खा जाते हैं, उनको बदअखलाक बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? बदअखलाक, बदतमीज़ बना देते हैं। बड़े बड़े घर के बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। तो वो हमारे बच्चों की बॉर्डर बन जावे, इसके लिए हमें अल्लाह ने कौन सा अमल दिया है? तबलीग का अमल दिया कि हमारे बच्चों को थोड़ी बहुत तबलीग के रास्ते से ग़िज़ा मिले, अल्लाह सुनने को इनको मिल जाए, आखिरत सुनने को मिल जाए, अल्लाह के इताअत वाली ज़िंदगी इनको मिली रहे, ताकि ये फरमाबरदारी के साथ संभले हुए महफूज शक्लों के साथ ये परवान चढ़ें। इसके लिए आप हजरात को स्कूल के ज़माने में मुख्तसर छोटे से अमल बताते हैं कि अगर बच्चों में वो चीज़ें ज़िंदा हो जाएँ तो इनके संभलने के असबाब पैदा हो जाएँ। इसलिए आप हमारे भाई हो, हम भी आपके भाई हैं, अल्लाह ने आपको हमारा भाई बनाया है। हम आपकी हमदर्दी और खैरखाई चाहते हैं कि हमारे ये भाई परवान चढ़ें, अच्छे से अच्छे परवान चढ़ें और अच्छे बने, दुनिया में भी बड़े बने और आखिरत में भी बड़े बने, हम तो ये चाहते हैं। और इंशाल्लाह ये शक्ल से आप परवान चढ़ गए तो अल्लाह दुनिया में भी अच्छे बड़े बनाएगा और आखिरत के भी अच्छे बड़े बनाएगा। क्यों? कि जब आप अच्छे परवान चढ़ोगे, अच्छे परवान चढ़ोगे तो लोगों के खैरखा बनोगे, हज़ारों लोगों की दुआओं के मुस्तहिक तुम बनोगे, फिर उसके बाद खुद अच्छे काम करने वाले बनोगे, जिम्मेदारी वाली ज़िंदगी आप गुजारोगे तो लोगों की दुआएँ भी मिलेगी और अल्लाह के रहम करम भी तुम्हारे साथ होगा। और खुदा न करे इस बचपन में ये माहौल नहीं मिला तो गलत तरविश से परवान चढ़ेगा। एक मास्टर है स्कूल पढ़ाने वाला, अब उसको नौकरी मिल गई, उसने ये सोचा कि भाई मुझे तो नौकरी मिल गई, बस बात पूरी हुई, बच्चों को पढ़ना हो या ना पढ़े हमें कोई मसला नहीं, हमें तो टाइम पूरा करना है। अब ये आया 6 घंटे पढ़ा कर चला गया, बच्चों ने पढ़ा तो क्या, नहीं पढ़ा तो क्या। तो उसने अपनी ड्यूटी ज़रूर पूरी कर ली लेकिन इसने खयानत की है। क्या किया बोलो? कि वो पढ़ाने के पैसे लेता है, अब उसने हक जी लगाकर पढ़ाने में खयानत की तो अब इसकी आमदनी में खोट हो गई कि जिसके बदले में पैसे ले रहा था वो तो काम उसने किया नहीं, टाइम की चोरी कर रहा है, तो इसके टाइम की चोरी का उसके अंदर खयानत हो गई। अब ऐसी कोई गिज़ा उसके पेट में गई तो उसके पैसा उसके लिए अजाब बना। अब वो पैसे ऐसे अपने बच्चों को खिलाएगा तो सच बताओ उसके बच्चे कैसे बनेंगे, बुजुर्ग बनेंगे? कैसे हराम की गिज़ा खा खा कर उसके बच्चे पता नहीं कैसे बनेंगे। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को सही माहौल नहीं मिला बचपन में और वो बड़ा हो गया, वो डॉक्टर बना। अब पेशेंट को वो कस्टमर समझता है, पेशेंट को खैरखा नहीं कर रहा है बल्कि क्या समझ रहा है? कस्टमर। अब उसके साथ पता नहीं कैसे छुरी चला रहा है। अब वो बेचारा मजबूर था, उसने पैसे दे दिए तो ठीक है, वो पैसे देकर चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास जो पैसे आए हैं उस पैसे से उसका सुख मिलेगा उसको? अच्छा वो पैसे अपने बच्चों को खिलाएगा, वो बच्चे सुखी हो जाएंगे? कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसे हर तबके का बड़ा कि अपने फील्ड में खुदा ना करे अगर इसको इस बचपने में सही माहौल फिज़ा नहीं मिली तो जिन खयानतों के साथ और जिसमें बेईमानियों के साथ ये बड़ा हुआ तो पता नहीं क्या क्या करेगा। पुलिस वाला है तो आप देखो पुलिस वालों को, दो लोगों को लोग बहुत बद्दुआ देते हैं, पुलिस वालों को और डॉक्टरों को। क्यों? कि पुलिस वाला भी लोगों के चलेगा तो भी लात मारेगा, बात करेगा तो गाली देगा, आपने देखा उसकी फितरत। अच्छे घर के बच्चे भी वहाँ जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्या हुआ? का माहौल का असर हो गया।
दूसरा अगर दीनदार डॉक्टर नहीं है तो वो लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ खेल खेलता है। आप देखो लोगों की जिंदगियों के साथ, लोगों को पता भी चल जाता है लेकिन लोग मजबूर होते हैं तो लोग कुछ कर नहीं पाते लेकिन हजारों बद्दुआएं उसको देकर के करते हैं। बोलो होता ही नहीं होता। ऐसे मुख्तलिफ शोबों के लोग होते हैं। ये मुबारक मेहनत के रास्ते से, ये तबलीग के रास्ते से आप हजरात को इन सारी चीज़ों से बचाने की ये मेहनत है कि हमारे बच्चों को बचपन में ये ऐसी फिक्र मिल जाए कि अच्छे से अच्छे बड़े बने। कैसे बने बड़े बने बोलो? ऐसे अच्छे बड़े बने कि इन पर अल्लाह को भी दया आ जाए और अल्लाह के बंदों को भी इन पर दया आ जाए। इसके लिए आपको पढ़ने के ज़माने में कुछ अमल बताए जाते हैं। वो अमल धीमी गति के अमल है। कौन सी गति के बोलो? अरे बोलो कौन सी गति के? धीमी गति के। लेकिन वो धीमी गति के अमल वक्त पर गाड़ी मंजिल पर ले जाएगी। आप बम्बई गए हो कोई? बम्बई में ट्रेनें चलती है धीमी गति की गाड़ी और दूसरी चलती है कौन सी? फास्ट गति की गाड़ी। तो जिसमें भी आदमी सवार हो जाए तो आदमी जब गाड़ी मंजिल पर पहुंचेगी तो उसमें जो सवार हुआ है वो भी कहाँ पहुंचेगा? अरे बोलो भाई मंजिल पर। क्या मंजिल पर पहुंच जाएगा? कोई ये कहेगा अरे तो धीमी गति की गाड़ी है मुझे नहीं बैठना, तो दूसरे दिन तक वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जो बैठ गया वो जब गाड़ी बम्बई से दिल्ली पहुंचेगी तो वो भी कहाँ पहुंचेगी? वो भी बम्बई पहुंच जाएगा। कोई सोते सोते उसमें बैठ गया तो वो सोते सोते भी पहुंच जाएगा। कोई झगड़ा कर रहा था, गाड़ी आ गई, झगड़ते झगड़ते बैठ गए तो झगड़ते झगड़ते बैठ गए पर बैठ गए तो भाई झगड़ते झगड़ते जब गाड़ी मंजिल पर पहुंचेगी तो झगड़ने वाले भी कहाँ पहुंचेंगे? क्यों? अरे बोलो क्यों? कि गाड़ी में बैठ गए हैं। तो जो भी गाड़ी में बैठ जाएगा कि जब उसका एंड आएगा तो जिस दिन उसकी पढ़ाई पूरी होगी उसको ये खैर खूबी भलाइयाँ अल्लाह का डर ये मंजिल पर पहुँच गए होंगे कि सारी चीज़ें हमको मिल चुकी होगी। तो ये तुम्हें धीमी गति की गाड़ी दी है, बहुत छोटे अमल दिए पढ़ने के ज़माने में। क्यों? कि आपको असल पढ़ने के लिए गए हो लेकिन बहुत मुख्तसर आपको अमल दिए हैं। मुख्तसर मशवरा, मुख्तसर तालीम, मुख्तसर मुलाकातें और छुट्टियों में मुख्तसर वक्त लगाना, लेकिन इसमें इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि वो आपको अल्लाह का दोस्त बना देगा। क्या बना देगा बोलो? अरे बोलो क्या बना देगा? हाँ अल्लाह का दोस्त। और जितना जवान इस चीज़ को करता है वो जल्दी अल्लाह का दोस्त बनता है। कितना बोलो कैसा बनता है? आपने किताबों में पढ़ा होगा कि बूढ़े के 70 सजदे किसके? अरे बोलो किसके? बूढ़े के 70 सजदे और जवान का कितना सजदा? का जवान का एक सजदा बूढ़े के 70 सजदों जैसा। अरे भी क्यों ऐसा हुआ? का जवानी में शैतान बहुत दौड़े डालता है, ये जवान पठान जैसा पठान है। क्यों? हम इसके डोरे में नहीं आएंगे, हम तो अल्लाह की इबादत में रहेंगे। तो एक तरफ उसके 70 सजदे और इसका एक सजदा उन सब पर भारी हो गया। तो जवान जल्दी अल्लाह का दोस्त बन जाता है। तो आपकी थोड़ी धीमी गति की गाड़ी जल्दी अल्लाह का दोस्त बना देती है। और जवानों को का अल्लाह की तरफ जाना अल्लाह को ऐसा पसंद है कि ऐसे बच्चे जब मरेंगे ना तो इनकी जगह अल्लाह ने अपने अर्श के नीचे रखी है कि जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत के साथ गुजारे उनकी जगह क्या है? अल्लाह का अर्श के नीचे है। तो आपकी जगह अल्लाह ने बड़ी बनाई है। तो अच्छा बताओ, जब आपके पास इतना ज़्यादा सरमाया और इतनी ज़्यादा अल्लाह आपको पूंजी दे रहा है तो आप मालदार हो जाओगे नहीं हो जाओगे दिन? तो अच्छा भाई बताओ, शैतान मालदार के वहाँ आता है या गरीब के वहाँ? अरे बोलो भाई, मालदार के वहाँ था या गरीब के वहाँ? अरे जरा जोर से बोलो,
मालदार।
तो आप भी मालदार हो गए हो। तो वो बच्चे जो ये सारे काम नहीं करते वो गरीब हैं, जो करते हैं वो मालदार है। तो भाई शैतान आपके पास ज्यादा आएगा या जो नहीं कर रहे उनके पास ज्यादा आएगा? भाई जरा जोर से बोलो। अरे भाई जरा जोर से बोलो, मालदार के पास। तो आप मालदार हो तो आप पर ज्यादा मेहनत करेगा, तो आपको ज्यादा संभलना पड़ेगा। इसलिए आप हजरात को ये अमाल समझाए जाते हैं। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कर भी रहे हो, उसके मुख्तसर करदारी भी सुन लेंगे, कुछ बाकी होगा तो उसका मुजाकरा भी कर लेंगे। इसलिए आप जो बातें यहाँ कहीं जाए उसको आप सरसरी ना समझें। क्या ना समझें बोलो? कि तो हर साल तबलीग वाले आते हैं और हमको बातें कहते हैं, इनको तो ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी संभलने के असबाब है। हाँ, तुम्हारे बनने के इसमें असबाब है। इसलिए इस करदारी को भी हल्के ना समझें और आगे कोई बात हो उसको भी हल्के ना समझें। तो गौर से सुनोगे इंशाल्लाह, और जो बात कही जाए अगर उसको कर रहे हो बहुत अच्छा, बाकी उसमें अगर कोई सुस्ती कमजोरी है तो आइंदा नियत कर लो कि इस सुस्ती और कमजोरी को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। कौन कौन ऐसे नियत करता है? सब करते हो? अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमा। अच्छा बताओ भाई, किसी स्कूल में माशाल्लाह हर साल आपको यहाँ कुछ काम समझाया जाता है, तो वो कोई स्कूल वाले आ जाए जिनके भाई भाई कहाँ जा रहे हो, नाराज़ हो गया? अच्छा, तो फिर आपको पहले ही पीछे बैठना था, आगे आ जाओ। तस्वीर का एक दाना निकलता है तो सारी तस्वीर
निकल जाए।
तो आप सब तय कर लो कम आखिर तक इंशाल्लाह
बैठेंगे।
ठीक है, उठने की भूल तो नहीं करोगे? बहुत अच्छी बात। ہاں تو کسی اسکول میں کچھ ہو رہا ہو تو ذرا کر ذرا سنا دو کہ ماشاء اللہ ہم گزشتہ آئے تھے, آپ ماشاء اللہ یہاں مذاکرے میں یہ بات آئی تھی, ہم یہ کام کر رہے ہیں. آ جاؤ بھائی, کسی اسکول میں کوئی محنت ہو رہی ہو تو ذرا سننا بھائی, ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. آ جاؤ, جہاں جو ہو رہا ہے, جس اسکول میں جو کام ہو رہا ہے ذرا سنا دو, جہاں بھی ہو رہا ہو, موڑا سا ہوتا ہو, جہاں بھی ہوتا ہو, تھوڑا سا سنا دو. ماشاء اللہ, واہ واہ, زور سے ہمت سے, گھبرائی ہوں.
مولانا صاحب, ریڈیل اسکول میں اذان کے ساتھ جماعت ہوتی ہے اور کوئی ایک اسٹوڈینٹ نماز پڑھاتا ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اور
آپ کے اسکول میں کتنے مسلمان بچے ہیں؟
پورے اسکول
کتنے بچے ہوں گے؟
500 جیتے.
او ہو, ماشاء اللہ. اس میں بالغ بچے کتنے ہوں گے؟
قریباً 250.
250. کتنے نماز میں آتے ہیں؟
سب
سارے ہوتے ہیں. واہ واہ, ماشاء اللہ. ایک تو نماز کا عمل کرتے ہیں, پھر تعلیم آتی, تعلیم ہوتی.
ہاں,
اسکول میں تعلیم ہوتی.
ہاں, صبح
تو سب بیٹھتے ہیں.
ہاں,
بہت اچھا. کون سی کتاب سے تعلیم کرتے ہیں؟
پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.
اچھا, اس کا یاد ہو جائے.
ہاں,
بہت اچھا. اور
اس کا ٹرانسلیشن میننگ
یا پھر اسکول کے پروگرام ہیں؟
ہاں,
یہ آپ کے اسکول کی طرف سے ہے؟
ہاں.
اچھی بات, ٹھیک. بہت سارے اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور
آخری میں اسکول سے جاتے ہوئے ولس کی دعا پڑھاتے ہیں.
اچھا, اسکول والے پڑھاتے ہیں, بہت اچھا. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے. اچھا, آپ کے بچے گشتوں وغیرہ میں اپنی مسجدوں میں جوڑتے ہیں کچھ, اس کی آپ ان کو فکر دلاتے ہو؟ اچھا اچھا, مولا صاحب میں ٹوٹل کتنی مسلم اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے پاس؟ اس کی لسٹ ہے؟ ہے. ٹیچروں کی لسٹ ہے؟ اچھا, بن رہی ہے. آپ سال بھر میں کبھی ٹیچروں کا جوڑ کرتے ہو؟ نہیں کرتے, اسٹوڈینٹ کے ساتھ ہی جوڑ لیتے ہو. اچھی بات. اور کسی اسکول میں کوئی محنت ہو رہی ہے؟ جلدی آتے ہو بھائی, ٹائم دیکھو, بہت تھوڑا ہے بھائی. کوئی ٹیچر سنائے دو, ٹیچر سنا دو, اسٹوڈنٹ سنا دو, اسٹوڈنٹ سنا دے, کوئی بھی سنا دو, ٹائم بہت تھوڑا ہے. ارے بھائی, اگر تمہارے وہاں ہو رہا ہے تو آ جاؤ, بہت دیر لگاتے ہو.
ہمت چکر میں میڈیکل کالج ہے, یہاں پر MBBS, تو وہاں پہ الحمد للہ مطلب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹ ہے, وہاں پہ 8-10 اسٹوڈنٹ ہے, وہ ماشاء اللہ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے اور موقع مل تعلیم بھی کرتے. ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ ہے جو بیچ میں ابھی کھانے کے ساتھ ان کا مختصر جوڑ بھی کیا تھا ہم نے, اور اجتماع میں بھی پہنچتے رہتے, کبھی جمعرات کے اجتماع میں بھی
ان کی ملاقاتیں وقتاً فوقتاً
ہوتی رہتی ہے الحمد للہ.
یہیں کے ہیں یا باہر کے؟
نہیں, باہر کے. صبر یہاں کے کوئی نہیں ہے, مطلب باہر کے.
مانوس
مانوس تو دو ہی ہے, باقی سب مانوس نہیں. ابھی نئے آئے ہو اس سال, وہ پتا نہیں, بٹ پرانے میں مانوس کم ہے.
مطلب وہ بچوں میں ایسی فکر نہیں ہے کہ وہ آپس میں فکر کریں؟
نہیں, ایک اسٹوڈنٹ ہے اپنا, الحمد للہ وہی کر رہا ہے وہاں فکر. ہم تھوڑی, وہ اپنے امداد سرکھیج کا ہی ہے جو آپ اراکت, ماشاء اللہ وہ مانوس ساتھی ہے اور فکر مند بھی ہے, تو وہی ساری وہ ترتیب کرتا ہے وہاں پہ, کیونکہ باہر والوں کو انٹری نہیں ہے اندر,
وہ کرتا ہے.
ہاں, بس وہ فکر کرتا, ہم یہاں سے تھوڑی رہبری کرتے رہتے.
آپ لوگ بھی ان سے ملتے ہو؟ اختلاط
ہاں, ملتے رہتے ہیں. بیچ میں ہم نے کھانے کا بھی کیا تھا تو جڑے تھے, ماشاء اللہ.
اتنی اچھی کارداری اور آپ بیٹھے ہو.
اس کے علاوہ اور بھی دوسری اسکولوں میں,
انجینئر
کالج سمرتھ میں ہوتے.
اچھا, اور کون سے اسکول میں ہو رہا ہے؟ جہاں ہوتا ہو ذرا سنا دو. آ جاؤ جلدی جلدی, آ جاؤ جلدی جلدی, آپ بھی آ جاؤ. یہ دونوں ایک ہی اسکول کے ہو تو آ جاؤ آ جاؤ, ماشاء اللہ.
السلام علیکم. وعلیکم
السلام.
ہماری ہاسٹل میں ہمت نگر میں مشورہ بھی ہوتا ہے.
کتنے مسلمان بچے ہیں؟
پوری ہاسٹل میں مسلمان ہیں.
ماشاء اللہ, کتنے بچے ہیں؟
30 ہیں.
بہت اچھی بات.
سب لوگ نماز میں جڑتے ہیں, پانچ نماز میں. عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے,
اور
روم کی تعلیم ہوتی ہے اور مسجد کے اندر بھی تعلیم ہوتی ہے.
ماشاء اللہ, سب بیٹھتے ہیں تعلیم؟
ہاں, تعلیم میں سب بیٹھتے. گشت ہوتا ہے اور پنپوسا کے لیے مرکز مسجد میں جوڑا جاتا ہے.
ماشاء اللہ, چھٹی ہوتی ہے اس دن آپ کی؟
ہاں, چھٹی ہوتی ہے مغرب کے بعد.
بہت اچھی بات. اور آپس میں کچھ ملاقاتوں کا نظام؟
ہاں, ملاقاتوں کے اندر ہاسٹل کے اندر ہوتا ہے.
کرتے ہو؟
ہاں ضرور.
ماشاء اللہ, ملاقات کرنے والے کتنے بچے ہیں؟
ملاقات کرنے والے 30 بچے, اس میں سے दो बच्चे मुलाकात करने वाले होते हैं और दो बच्चे मुलाकात जिसकी की जाती है।
तो ऐसे मुलाकात करने वाले कितने बच्चे हैं आपके मशवरे से, कितने तय होते हैं?
ये सब मुलाकात करते हैं, एक दिन में एक मुलाकात दी जाती है।
सबकी मुलाकातें करते हैं?
सबकी मुलाकातें होती है।
और उसमें वक्त लगा हुआ बच्चे कितने हैं?
बड़े बच्चे उनका वक्त लगा हुआ है।
माशाल्लाह माशाल्लाह।
छोटे बच्चे हैं
तो बड़ों की जमात बनती होगी जो छोटों से मिलने जाते होंगे।
हाँ।
माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई, इतना अच्छी कारोबारी है, वाह वाह भाई माशाल्लाह, तो बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह और कबूल फरमाए। और इज्तिमा में कितने पहुँचते हैं पंचकों से?
7 या 8 पहुँचते हैं जो बड़े बच्चे हो।
अच्छा, बाकी छोटे?
छोटे को तो इजाजत नहीं है वो नहीं।
अच्छा, बाकी सब बड़े पहुँचते हैं। बहुत अच्छी बात माशाल्लाह, वाह वाह। 24 घंटे जमात में जाते हो? जाते हो? कहाँ जाते हो?
हॉस्टल से नहीं जाती जमात।
हॉस्टल से नहीं जाते?
जानी है तो इजाजत लेनी पड़ती है अपने घर की तरफ से।
नहीं, घरों से इजाजत मिल जाए, हॉस्टल से मिल जाए तो फिर आप 24 घंटे लगाते हो? कितने बच्चे लगाते हो? अच्छा, निकली नहीं है। ठीक, बैठो, आ जाओ भाई। माशाल्लाह, इतनी अच्छी कारोबारी, वाह वाह, बड़ा अच्छा काम किया, अल्लाह कबूल फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम। हमारी स्कूल जामिया हिदायत मरकज जो है, उस स्कूल में सुबह जब प्रेयर होती है तो किरात से होती है और फिर नज़म होती है, फिर जब रिसेस होती है लंच का टाइम, उस टाइम 1 से 5 दुरंग की बच्चों की, मतलब बॉयज और गर्ल्स सबकी नमाज होती है, उससे बड़े बच्चे होते हैं वो मरकज के अंदर नमाज पढ़ते हैं, तो वो सब टीचर्स की निगरानी में सब नमाजें होती है, और लिबास भी जो होता है हमारे वहाँ पे वो मुसलमान का जो लिबास है वही टोपी के साथ और सब लेके के साथ आना है, जो लड़कियाँ होती है वो बंकी पहन के आती है। नहीं उर्दू हमारे वहाँ पे टीचर है वो संस्कृत नहीं पढ़ाते, लेकिन उसकी जगह पे उर्दू पढ़ाते हैं हम।
आप अपने घर जाए, वो तो आप बोले ना जब्बे के साथ, वो गुजराती में लिखते हैं ना मोहतरम हजरात, तो ऐलान करने वाला भी ऐसा ही करता है मोहतरम हजरात, और ना जो उर्दू पढ़ते हैं वो कहते हैं मोहतरम हजरात, लेकिन चूँकि हजरा गुजराती में होता नहीं, ज होता है, तो वो यही ज भी बोलते हैं, ऐलान में भी ज बोलते हैं, इसलिए मैंने पूछा क्या उर्दू पढ़ते हैं। चलो,
तो हमारे वहाँ पे उर्दू ही से चलता है, तो जो संस्कृत है वो नहीं पढ़ाते, उसकी जगह पे उर्दू के आलिम है वहाँ पे, तो वो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाते हैं।
बालिग बच्चे कितने हैं?
बालिग बच्चे 1 से 10 तक हमारा वहाँ पे स्टैंडर्ड चल रहा है।
अच्छा, तो बाले बच्चे नहीं होंगे?
नहीं,
ऐसे में तो बालिग ही होते हैं।
हाँ।
तो जमात में जाने का फिर उन बच्चों में जो बड़े हों उनका कोई तरतीब बनती है?
नहीं, हम अभी कभी कभी उनकी तस्किल करते हैं और होता है तो बात भेजते हैं उनको।
बात अच्छी। अच्छा भाई, और कहीं और किसी स्कूल में कोई मेहनत हो रही? जल्दी से आ जाओ भाई, इस बच्चे को जगह दे दो, दोनों जगह दे दो भाई, माशाल्लाह, वाह वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह 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 वाह। और भाई किस स्कूल में कोई मेहनत हो रही हो?
हमारी हिम्मतनगर की स्कूल में, आमीना स्कूल में, हर शाम ईशा की नमाज के बाद तालीम रखी जाती है, और हर शनिचर को 1.5 दिन की जमात में जाने सभी लोग 8 जन की जमात बनाई जाती है, और सभी उसमें भाग लेके जाते हैं जमात।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह।
और हमने सबने साथ मिलकर ये नक्की किया था कि हम जिस स्कूल में जाते हैं उसमें जितने मुस्लिम लड़के हैं उनकी रोज मुलाकात करने की, 1-2 की।
क्या दोबारा सुनाओ आपकी कारदारी?
हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में हम हॉस्टल वाले 30 लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि हम जिस स्कूल में जाएंगे उसमें से हर रोज दो लोग की मुलाकात करके आएंगे।
माशाल्लाह। दूसरे जो मुस्लिम स्कूल है उनमें या आपके हॉस्टल में?
ना, हमारी हॉस्टल में 30 लोग है, वो हमारी स्कूल जिस स्कूल में जाते हैं ना वहाँ पे।
अच्छा, हॉस्टल में रहते हो फिर स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो वहाँ और मुसलमान होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बहुत अच्छी बात। और
1.5 दिन की जमात हर शनिचर को निकाली जाती है। महीने
जाते हो? सारे बच्चे?
सारे बच्चे।
वो कहाँ जाते हो आप लोग 1.5 दिन के लिए?
आसपास में
अलग जमात बनती है, जमात होती है उसके साथ जुड़ जाते
ना? हमारे स्टूडेंट की अलग जमात बनती है हॉस्टल में से।
अच्छा, और 10 दिन और 40 दिन जाते हो?
ना, वो स्कूल की रजा नहीं होती ना, वेकेशन में हम नहीं गए थे, पर हमारे हॉस्टल के थे वो 40।
हाँ, तो कोई बात नहीं, स्कूल के तो गए थे,
हॉस्टल की गई थी।
बहुत अच्छी बात माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। और कहीं
हमारे स्कॉलर हॉस्टल, अरे स्कॉलर स्कूल जो है वहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे 30 जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं, ज़्यादातर लोग गैर मानूस है वहाँ पे, जो स्टूडेंट है वो 30 30 स्टूडेंट हैं, उसमें से 10-12 मानूस हैं, दूसरे गैर मानूस हैं। पहले वहाँ पे जमात होती थी, इनफिरादी लोग नमाज़ पढ़ते थे, सब स्टूडेंट अलग अलग नमाज़ पढ़ते थे। फिर बच्चों को तरबियत दी गई, समझाया गया, आपस में मोहब्बत के साथ रहने की बात की गई, तो बच्चे धीरे धीरे साथ में जमात के साथ पढ़ने लगे। और वहाँ पे एक मौलाना भी रखे गए जो बच्चों की तरबियत के लिए वक्तन को नसीहत करते रहते हैं, और सुबह में जो प्रेयर होती है उसके अंदर भी कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर हदीस बयान करता है, और उसके साथ जो प्रिंसिपल होते हैं वो हदीस की तशरीह भी बयान करते हैं। वो माशाल्लाह प्रिंसिपल भी जमात तबलीग के अंदर लगे हुए हैं।
और आपस में मुलाकातों का निज़ाम है?
जी नहीं, वो गैर मानुष तबका ज़्यादा है, इसलिए
अच्छी बात
आपस में
जमात में जाने का भी कोई रिवाज
नहीं है।
चलो
जज़ाकअल्लाह खैर। देखो माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा काम स्कूलों में शुरू हुआ। बस ये मुख्तसर अमाल है जो आपने सुने ना, लेकिन ये मुख्तसर अमाल को आप मुख्तसर ना समझें। आपने वो कहावत सुनी है, पानी का कतरा पत्थर पर पड़ता है, पत्थर को भी क्या कर देता है, अरे बोलो, सुराख कर देता है, फाड़ देता है। ये धीमी गति के अमाल है, लेकिन ये तबीयतों को बदल देता है। इसमें हमारे बुजुर्ग क्या फरमाते हैं कि हमारे अमलों में एक अमल ये है कि हमारा मुसलमान बच्चा इस एहसास के साथ पढ़े कि हम मुसलमान हैं। क्या है बोलो? हम मुसलमान। क्योंकि आमतौर से हमने देखा है कि लोग अपने इस्लाम को जाहिर करने में शर्माते हैं। क्या करते हैं बोलो? हमने देखा लोग ट्रेनों में नमाज नहीं पढ़ते, फ्लाइटों में, शर्म आती है उनको कि यार लोग क्या कहेंगे, लोगों के क्या देखते हो, अल्लाह क्या कहेगा वो देखना है। अगर वो इस लोगों की परवाह करता है और अल्लाह की परवाह नहीं करेगा तो वो अपने दीन को छोड़ देगा, और अगर उसने दीन छोड़ दिया तो अल्लाह की निगाहों से गिर जाएगा, फिर ना उसकी दुनिया ठीक होगी ना आखिरत ठीक होगी। तो ये एहसास इसको दिलाना है। इस एहसास को दिलाने के लिए उसको क्या करना है? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें जमा करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। कौन सी चीज़ है बोलो? किताबों में आता है कि जब मुसलमान की नमाज ख़त्म हो जाती है तो शैतान को उस पर काबू पाना आसान है, उसको फौरन पकड़ लेता है। अगर मुसलमान को शैतान की पकड़ से निकालना है तो उसको नमाजी बना दो, वो नमाजी बन जाएगा, तो नमाजी आदमी शैतान के लिए भारी होता है। क्या होता है बोलो? तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुसलमानों के संभलने के असबाब ये हैं कि ये महफूज हो जाएंगे। तो माशाल्लाह स्कूलों में कुछ फिक्रमंद बच्चे होते हैं, वो अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। हमारे हजरत ये फरमाते हैं कि उनसे ये तरगीब दी जाए कि आप अपने स्कूल में इज्तिमाई नमाज पढ़ो। अगर स्कूल है या हॉस्टल है और नमाज का वक्त आ जाए तो अकेले अकेले नमाज ना पढ़ो, हॉस्टल में इज्तिमाई नमाज पढ़ो, स्कूल में इज्तिमाई नमाज पढ़ो। इज्तिमाई नमाज के लिए वहाँ मस्जिद तो है नहीं, फिर कहाँ पढ़ोगे? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया की जितनी ज़मीनें हैं सारी ज़मीन मुसलमानों की नमाज के लिए जगह बना दी, जहाँ भी पढ़नी हो पढ़ सकते हैं। बिल्डिंग के छत पर चले जाओ, पार्क में चले जाओ, क्लास में पढ़ लो। ऐसा नहीं समझने का कि क्लास नापाक हो गई, अपनी आंखों से कोई नापाक की देखे तभी जगह नापाक होती है, वरना शक से नापाक नहीं होती। बिछाने का बहुत अच्छा, वरना जगह पाक है। तो हम जब इज्तिमाई नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्कूल में रहते हैं ना, तो उन्हें पता ही नहीं होता ये मुसलमान है कि नहीं, कौन मुसलमान है कौन नहीं। जब वो देखेंगे कि ये मुसलमान बच्चे हैं तो वह हम मुसलमानों से दोस्ती करेंगे। हमारा हलोल रोड है, वहाँ के कुछ बच्चे, दो तीन बच्चे मुझे मिलने आए, कहने लगे मौली साहब हमारे स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म है, लड़के लड़कियों का एक यूनिफॉर्म, और हमें पता नहीं है कि उसमें कितने मुसलमान हैं, और वहाँ कोई धर्म की एक्टिविटी कोई नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने रूल्स बनाए, हम क्या करें। तो हम लोगों ने उनको ऐसी बस तरकीब देकर कहा कि आप नमाज पढ़ सकते हो, धार्मिक एक्टिविटी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा वहाँ मत करो, लेकिन जब रिसेस हो तो अपने जो तुम्हारी बॉर्डर बनाई हुई उसके बाहर तो कर सकते हो, वहाँ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप जो है दो चार हो, दो तीन गोधरा के थे वहाँ, कहा तुम वहाँ नमाज शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह लोगों को तुम्हारे पास भेजेगा, इसलिए तुम वहाँ माहौल नहीं बना सकते भाई कौन मुसलमान है कौन नहीं है। तो दूसरी मरतबा वो मिले तो वो कहने लगे मौली साहब हमने जब नमाज शुरू की तो झाड़ के नीचे बाहर तो तीसरा एक मुसलमान आया, मैं भी मुसलमान हूँ, एक आया मैं भी मुसलमान हूँ, एक आया मैं भी मुसलमान हूँ। कहा 15 आ गए, कितने आए? हमें पता ही नहीं था, एक साल हमने ऐसे गुजार दिया, हमें पता ही नहीं था। और कहने लगे उस लिबास में जो बच्चियाँ थी हमें नहीं पता था, वो भी बच्चियों ने अगर कहा हम भी मुसलमान हैं। कहा तब हमें पता चला कि सारे के सारे मुसलमान हैं। ये इज्तिमाई नमाज की बरकत होती है कि सब लोगों को नमाज पढ़ने की हिम्मत आ जाती है। और जो हम लोग हजरत मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो यहाँ से फ्लाइट से गए, 8 बजे हम वहाँ पहुँचे दिल्ली एयरपोर्ट। अब मगरिब का टाइम जाने के करीब थे, ईशा का मगरिब का टाइम, तो अब जल्दी जल्दी खा नमाज पढ़ें। तो हम लोगों ने रकात बांधी एयरपोर्ट पर ही,
तो हमने सलाम भेजी तो देखा पीछे 200-400 आदमी खड़े हैं, वो सब यारों से इधर उधर से आए थे, लेकिन सब लोग डरे हुए थे, क्या नमाज पढ़ेंगे क्या नमाज पढ़ेंगे। लेकिन जब एक नमाज शुरू हुई तो पीछे चालू हो गए, हिम्मत आ गई। इज्तिमाई नमाज से ये चीज़ें खुलती है। अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब आप लोग अपने हॉस्टलों में इज्तिमाई नमाज पढ़ोगे ना तो जितने कमज़ोर मुसलमान होंगे इन्हें हिम्मत आ जाएगी, वो आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। इसलिए एक तो हर तालिब इल्म ये तय करे कि हम अपने दीन को भी बचाएंगे और हमारे मुसलमान भाइयों के भी दीन को बचाएंगे, और उसके लिए अगर ज़रिया सबब हमारी नमाजें हैं तो इंशाल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। इज्तिमाई नमाज एक तो पढ़नी है, इसको शुरू करोगे उसके लिए स्कूल वालों से ना पूछना कि हमको मस्जिद दो, क्यों कि अगर उन्होंने आपका मना कर दिया फिर आप पढ़ोगे तो आप मस्जिद के स्कूल के कानून के खिलाफ करने वाले होंगे। तो आप शुरू कर दो, वो खुद ही रास्ता निकल जाएगा, पूछने जाओगे मना कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बराबर है, हमें स्कूल के कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना। एक तो हमारी इज्तिमाई नमाज हो, करोगे इंशाल्लाह। दूसरा क्या करोगे, जब ये बच्चे आपके पास आ गए हैं, अगर आपकी हॉस्टल है, ये बच्चे दिन भर पता नहीं किनके साथ रहते हैं, लायानी इधर उधर की बहुत सारी सुनते हैं, ये मुसलमान बच्चा इस्लाम के साथ जिए, मुसलमान बनकर जिए, उसके लिए उसको कम से कम कुछ बातें अल्लाह रसूल की तो सुनानी है। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं किसी एक नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए हमारी फजाइल की किताबों में से पढ़कर इनको सुनाओ। 24 घंटे ये बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुनता है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान रहने के क्या नफ़े हैं? जब ये सुनेगा अल्लाह के अमाल के साथ रहने के क्या नफ़े हैं, तो वो इस चार दीवारी में इन अमाल के साथ रहने की उसके अंदर फिक्र आएगी, वरना वो ऐसी हरकत करेगा कि अल्लाह की पना अल्लाह की पना। तो इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ हॉस्टल है, बच्चे मुकीम हैं, ऐसे बच्चे क्या करें कि ऐसे बच्चों को थोड़ी देर के लिए तालीम सुनाओ। तो माशाल्लाह जैसे दो हॉस्टल वालों ने सुना कि हम तालीम करते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर ज़िले में और कहीं ऐसे हॉस्टल हैं तो वो भी फिक्र कर लें कि हम इंशाल्लाह तालीम का अमल करेंगे। जिन स्कूलों में हॉस्टल नहीं है, बच्चे घर चले जाते हैं, हमारे बुजुर्ग यह फरमाते हैं कि उन बच्चों को हम नमाज के बाद अगर मौका हो तरगीब दे दें कि भाई अपने अपनी मस्जिदों में तालीम होती है, उन तालीमों में जुड़ो। हम रोज़ाना अगर थोड़ी सी तरगीबी बात कर लेंगे, अगर मौका है वहाँ 2-3 मिनट तालीम सलाम देने का तो हमने सुना दी, बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ मौका नहीं है तो कम से कम अपनी मस्जिदों की तालीम में वो शरीक हों, क्योंकि वो तो रोज़ाना घर जाते हैं, तो इन्हें अल्लाह रसूल की बात सुनने का कुछ मौका मिल जाएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात भी उन्होंने अल्लाह रसूल की नहीं सुनी तो ये दुनिया भर की अला बला रोज़ सुनते हैं, रोज़ाना उनके दिमाग उन चीज़ों से भर जाएंगे। जो भरने की बातें हैं उससे नहीं भरेंगे, और ना भरने की बातों से इनके दिमाग भर जाएंगे। इसलिए रोज़ाना कुछ अल्लाह रसूल की इनको बात सुनानी है, करेंगे ये दूसरा अमल भी। तीसरा अमल हमें क्या करना है? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि आप बच्चे तो फिक्रमंद हो, आप सारे बच्चे फिक्रमंद हो, लेकिन आपके स्कूलों में जैसे अभी 2-3 ने सुनाया कि हमारे स्कूल में तो गैरमानुष बच्चे हैं, अब इनको ये बेचारों को माहौल नहीं मिला जो आप हजरत को माहौल मिला, इज्तिमा मिला, गश्त मिले, आप बयान में आते हो, लेकिन जो गैरमानुष है वो बेचारे हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन उनको बेचारों ने किसी ने गलत बात समझा दी, क्या समझा दी, अल्लाह के नबी को नहीं मानते ऐसा समझा दिया, तो वो हमसे दूर दूर रहते हैं, लेकिन हम उनको ज़ाया नहीं होने देंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे स्कूल में जो बच्चे फिक्रमंद हैं, जैसे आप लोग फिक्रमंद हो, तो क्या करें का रोज़ाना 10 मिनट, कितने मिनट बोलो, अरे बोलो कितने मिनट, 10 मिनट इन बच्चों के लिए फारिग करो। का कैसे फारिग करें? हमारे पास तो टाइम नहीं है। क्या ना आपके पास टाइम है? कैसे टाइम है? देखो स्कूल शुरू होती है ना, स्कूल शुरू, तो स्कूल शुरू होने से 10 मिनट पहले चले जाओ, या भाई रिसेस में 10 मिनट, या छुट्टी के बाद 10 मिनट, किसी वक्त में 10 मिनट फारिग करो। और ये फिक्रमंद बच्चे दो टारगेट बना दे, भाई हम दो मिलकर, भाई हम 10वीं के बच्चे हैं, हमें पता है कि हमारी क्लास में 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 11वीं वाले को पता है कि हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, 12वीं वाले को पता है कि हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, हम दो दोस्ती करें, एक बार आज हम दो की जोड़ी बन जाएं और एक बच्चे से आज मुलाकात करेंगे। अब वो बच्चा अगर पहले से तबलीग वाला है, तबलीगी माहौल का, तो उससे आखिरत की बात करेंगे, नमाज की बात करेंगे, भाई हमारे स्कूल में नमाज हो रही है, पंचकोसी की बात करेंगे, तालीम की जो बातें हैं वो सारी करेंगे। लेकिन वो बच्चा गैर मानुस है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो भाई पहले दिन तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम दो मिलकर आज उससे दोस्ती की बात करेंगे। कौन सी की बात करेंगे बोलो? हाँ, दोस्ती की बात। या इसलिए कि अगर हमने उसको दोस्त बना लिया तो दोस्त के लिए तो बहुत कुछ कर देता है। हाँ, दोस्त दोस्ती में पढ़ता नहीं क्या क्या दुनिया में लोग धर्म परिवर्तन कर डालते हैं, नहीं कर डालते, दोस्ती में कर डालते हैं। क्यों? कि दोस्ती को इन्होंने बड़ी समझी। अगर अल्लाह को बड़ा समझते तो ऐसा ना होता। हम दोस्ती बनाएं, दोस्ती तो दोस्ती के लिए अपने जेब के पैसे उन पर लगाएं। कैसे लगाएं? एक चाय की प्याली उनको पिला दो, एक चाय की प्याली। भाई देखो आज तुम चाय पीने जा रहे हैं, तुझे भी हमारे साथ आना है। अब चाय पीने के लिए ले गए तो अब हमारे अरबी में कहावत है, आदमी एहसान का गुलाम होता है, अल मर ओ अब्दुल एहसान, जिसकी खाता है उसकी गाता है। हमने दोस्ती कर ली, ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ماشاء اللہ ماحول بنا. دوسرے دن گھر سے کچھ لے گئے اس کے لیے, آج تو ہماری امی نے سموسے بہت اچھے بنائے, میں آپ کے لیے لایا ہوں. وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اس کو کیا ہو گیا, لیکن آپ نے دو سموسوں میں اس کا دل جیت لیا. کیا جیت لیا بولو؟ دل جیت لیا. تو دو سموسوں میں آپ اس کا دل جیت لو گے, تو اس سے دوستی کرو, پیار محبت کی بات کرو. دو چار مرتبہ آپ کی اس طرح ہوئی تو پھر آپ اس کو کہو گے بھائی دیکھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تم بھی ہمارے ساتھ نماز میں آ جاؤ, وہ آپ کے ساتھ نماز میں آ جائے گا. تو آپ ایسے کئیوں کو مانوس بنا دو گے, اسکول کے ماحول میں ان کو یہ ساری چیزیں ملے گی. کہاں ملے گی؟ ہاں, ہمارے ہندوستان کے بہت سارے بچے یہاں تبلیغ میں نہیں لگے تھے, وہ کمانے کے لیے باہر ملکوں میں گئے, وہ باہر ملکوں میں تبلیغ کی فضا تھی تو وہ وہاں سے تبلیغ لے کر آئے. کیا لے کر آئے بولو؟ کیسے؟ وہاں تبلیغ تھی تو وہاں سے تبلیغ لے کر آئے, وہاں چاکلیٹ تھے تو وہاں سے چاکلیٹ لائے, وہاں 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 کیک تھے تو وہاں سے کیک لائے, وہاں تبلیغ تھی تو تبلیغ بھی لائے. تو آپ کے اسکول میں یہ ہوگا تو وہ یہاں سے لے کر جائیں گے. اس کے لیے تیسرا کام آپ کو کیا کر رہے ہیں, اگر تبلیغ والے بچے ہیں تو ان سے روزانہ 10 منٹ کی ملاقات آپ کرو, اور اگر وہ بچے تبلیغ والے نہیں ہیں, غیر مانوس کے بچے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہم ان سے دوستی کریں گے. جب زمین نرم ہو جائے گی تو دانا ڈال دیں گے, لوہا نرم ہو جائے گا تو ٹیپ دیں گے. اس لیے ایسے بچوں کو بھی چھوڑنا نہیں, ان سے دوستی کرنی. کرو گے انشاءاللہ؟ تو کون کون نیت کرتا ہے میں روزانہ ملاقات کروں گا 10 منٹ, کتنے منٹ؟ 10 منٹ کی ملاقات. 10 منٹ میں موٹی موٹی دو چار باتیں کر لینی ہے تاکہ آپ کی پڑھائی پر اثر نہ ہو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ ایک روزانہ کی اجتماعی نماز, روزانہ کی تعلیم, اور تیسرا کام روزانہ کی ملاقاتیں ہیں. یہ ہو گئی. پھر چوتھا کام آپ کا کیا ہے؟ جو ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں ان کا چوتھا کام کیا ہے؟ کہ ان کا چوتھا کام یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ لوگ گشت کا طے کر لو. گشت کا طے, اس گشت کے دن میں آپ خود بھی جوڑو اور ہاسٹل کے جو بچے مسلمان ہیں ان کو بھی اس گشت کے عمل میں جوڑنے کی فکر کرو تاکہ وہ بچے اللہ رسول کی کچھ بات سنیں. اور پانچواں کام یہ ہے کہ ان کو 15 دن میں ایک مرتبہ, اگر ان کے پاس مہینے میں 3 دن کی چھٹی ملتی ہو 3 دن لے جاؤ, نہیں 2 دن کی چھٹی ہے تو ان کو 2 دن, نہیں ہے 1 دن چھٹی ہے تو 1 دن. آپ کے وہاں سے جماعت نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں, جس گاؤں میں تمہاری ہاسٹل ہے وہاں مرکز میں چلے جاؤ, مرکز کے ذمہ داروں سے کہو ہمارے اتنے بچے 24 گھنٹے کے لیے تیار ہیں, کوئی جماعت ہوگی اس کے ساتھ آپ کو جوڑ دیں گے. تو ہمارے بچوں کا کچھ وقت لگے, جب وقت لگے گا تو ان کی فکریں بنے گی, ان کی سوچ, ان کے جذبات بنیں گے. اس لیے آپ کے 24 گھنٹے کم سے کم 1.5 دن 2 دن جو چھٹی ہے وہ لگنے چاہیے. اس لیے کہ آپ کے 28 دن جس کام میں لگ گئے اس کے سوچ وچار تمہاری بنی ہے, اس کام میں لگیں گے تو تمہاری سوچ وچار یہ بنے گی. تو تیسرا کام ہاسٹل والوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنی جماعتیں بنانی ہیں, تو بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون کہہ رہا ہے بنائیں گے؟ اور جو بچے گھر آ جاتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ 3 کام تو ان کے مسجد مطلب اسکول کے ہو گئے. ایک, اگر اسکول میں تعلیم ہوتی ہے تو اس میں بیٹھنا ہے, نماز میں شریک ہونا ہے, اور اسکول کی ملاقاتیں کرنی ہیں. پھر تم گھر آ جاؤ گے تو گھر میں کیا کرنا ہے کہ اسکول میں تو آپ کو وہ بچے ملیں گے, پتہ نہیں وہ دوسرے محلوں کے ہوں گے. اب آپ گھر آ گئے پڑھائی کر کے, تو آپ اپنی مسجد اور جماعت کے ساتھ شریک ہو کر آپ کے محلے میں جو اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, جوان بچے رہتے ہیں, اپنی مسجد اور جماعت کے ساتھ مل کر آپ کے پاس جو وقت ہے ان کی ملاقاتیں کرو تاکہ وہ بھی ضائع نہ ہو جائے. ان کو جیسے آپ مسجد سے جڑے ہو وہ بھی مسجد والے بنے. تو آپ اپنی مسجد والوں کے ساتھ جڑ کر ان کو مسجد میں جوڑنے کی فکر کرو. یہ آپ کو کرنا ہے. جیسے وہ وہاں گشت کریں گے اور ہاسٹل میں کریں گے, آپ کو محلے کے گشت میں شریک ہونا ہے. اور پانچواں کام آپ کو جو کرنا ہے, جیسے وہ اپنے ہاسٹل سے 24 گھنٹے جائیں گے, آپ کے پاس ہاسٹل تو ہے نہیں, تو آپ اپنی مسجد کے جماعت کے ساتھ آپ کے پاس جتنا وقت ہے اتنا لگاؤ, خود بھی لگاؤ, اپنے بچے جو آپ کے محلے کے ہیں ان کو بھی لگانے کی آپ کی فکر ہو جائے. اس سے نفع یہ ہوگا کہ بچوں کے سنبھلنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. ارے بھائی کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ اور آخری ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جس گاؤں میں جس شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, پنچکوسے ہوتے ہیں, تو اس پنچکوسوں میں اپنے بچوں کو وہاں لاؤ تشکیلیں کر کر کے. وہاں ایک فضا بنتی ہے, ماشاءاللہ مختلف علاقوں کے بچے آئیں گے, مختلف بستیوں کے آئیں گے. جب پنچکوسے میں آئیں گے اللہ رسول کی بات سنیں گے, ان کے ذہن بنیں گے, ان کی طبیعت, ان کی ذہن سازی ہوگی, ان کی فکر بنے گی. مجھے کاٹیاواڑا کا بچہ ملا ہمارے گودرا کے مرکز پر, اور کہنے لگا مولانا ہمارا گاؤں تو پورا کا پورا غیر مانوس ہے, کوئی بات نہیں سنتا, لیکن میرا ایک دوست ہے جو گودرے کا ہے, اس نے مجھے کہا, وہ مجھ سے اس نے دوستی کی, اور دوستی جب ہماری بڑھ گئی نا تو مجھے پنچکوسے میں لایا یہاں ہفتہ وار اجتماع میں, اور میری کھانے کی دعوت کرتا ہے. میں نے کہا تجھے کیا فائدہ ہوا؟ کہ مجھے تو صحیح بات سمجھ میں آ گئی, میں تو بہت غلط باتیں سوچتا تھا, تبلیغ والے ایسے, تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے, لیکن یہ تو نبی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ میری غلط. لیکن میں انشاءاللہ پڑھائی کر کے اپنے گاؤں میں جاؤں گا نا تو سب کو سمجھاؤں گا. میں نے کہا چلو کام ہو گیا. तहसीन बच्चों को पंचकोसों में लाओ, तो जिन जिन गाँव में पंचकोसे होते हैं उनको पंचकोसे में लाने की फिक्र, ताकि इनको ये माहौल मिले, करोगे इसके फिक्र। और जब छुट्टी के दिन हो जाएं तो छुट्टी के दिनों में हमारे 24 घंटे लगे हैं, 10 दिन की छुट्टियां हो तो 10 दिन की छुट्टियों में 10 दिन लगे हैं, चिल्ले जैसी छुट्टियां हो तो चिल्ले हमारे लगे हैं, और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो हमारे 4-4 महीने लगे हैं। 4 महीने लगाने के बाद फिर अपने फील्ड में हमें जाना है, ताकि उस फील्ड में हम रहकर अल्लाह के हुक्मों को पूरे कर सकें। अगर हमने अल्लाह के पूरा करने की ताकत नहीं सीखी है तो उन फील्ड में जाकर फिर नाफरमानियाँ हो जाएगी, फिर हम अल्लाह की निगाह से गिर जाएंगे। इसलिए छुट्टी के दिनों में हमें क्या करना है, छुट्टी के दिनों में अपना वक्त लगाना है, अपना भी लगाना है और जितने मुसलमान हैं सबका लगवाना है। लेकिन कैसे लगवाओगे, आपको पता ही नहीं है कि कितने मुसलमान स्टूडेंट हैं, तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि आप लिस्ट बना लो, हर गांव का लिस्ट हो जाना चाहिए, हर मस्जिद का लिस्ट, कि हमारे गाँव में हमारी मस्जिद में कितने मुसलमान स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर हैं। जब उनकी लिस्ट बन जाएगी तो आपको पता चलेगा कि हमें मेहनत कितनों पर करनी है। एक आदमी को खबर है नहीं, मेरी 100 एकड़ ज़मीन है, वो पानी कैसे पिलाएगा, वो तो 10 एकड़ होगा तो उसी में पिलाकर समझेगा चलो मेरी ज़मीन पर पानी मैंने पिला दिया। अल भाई तेरी 90 एकड़ तो छूट गई है, अब 10 एकड़ में तो अनाज उगेगा, 90 एकड़ में कांटे उग जाएंगे, बोलो खरी बात खोटी बात। तो हमें पता चले कि हमारे छोकरे कितने हैं, तो हम लिस्ट बनाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए हर मस्जिद के स्टूडेंट ये तय कर लो कि हम अपनी मस्जिद के अतराफ के स्टूडेंट्स की हर गांव की फहरिस्त बन जानी चाहिए, कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं, ताकि जब उसका मशवरा हो तो उस मशवरे में उन बच्चों के लिए मेहनत की तदबीर सोची जाए। माशाल्लाह इन्होंने कहा कि हमने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। और कहीं वालों के पास लिस्ट है भाई, अपने वहाँ कितने बच्चे हैं उसकी लिस्ट है, किसी इलाके वालों के पास? जी कहाँ वाले हो, लालपुर वाले हैं, वडाली वालों के पास है, आपके पास है, सबके पास है, बहुत अच्छा। अब माशाल्लाह आप लोग लिस्ट बना चुके, अब आगे की फिक्र ये करो कि उन 100% तक कैसे पहुंचा जाए। जो बच्चे स्कूलों में हैं उनको स्कूल के रास्ते से पहुंचना है, जो बच्चे मोहल्लों में हैं उनको मोहल्लों की मस्जिदवार जमातों के जरिए से उन तक पहुंचना है। करोगे इसके फिक्र इंशाल्लाह, अगर आपने ये मोटे मोटे अमल कर लिए ना, तो पढ़ाई के साथ इंशाल्लाह आप हजरत इतने अच्छे बनोगे कि अल्लाह के वहाँ भी कीमती हो जाओगे और अल्लाह के बंदों के वहाँ भी कीमती हो जाओगे। ये बातें हो गई, आखिरी दो बातें अर्ज़ करनी हैं कि आप पढ़ाई के लिए गए हो, आपके माँ बाप आप उनसे पूछना कैसे पैसे भेजते हैं, कितने माँ बाप इतना मुजाहिदा करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, आपके लिए पैसे भेजते हैं। इसलिए पढ़ाई में सुस्ती ना करें, खूब जमकर जी जान से पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छे नंबर से हमारे बच्चे कामयाब हों, अच्छे जी जान से पढ़ें। और अगर हमारी पढ़ाई के दरमियान में कोई बच्चे कमज़ोर पढ़ते हों तो बच्चों के माँ बाप को बेचारों का नहीं पता कि बच्चा कमज़ोर पढ़ा है, आप बच्चे उस बच्चे की फिक्र करो, उसको बहलाओ सहलाओ, भाई तुम पढ़ने आए हो सुस्ती करते हो, ऐसा ना करो, उसको हिम्मत अफजाई करो, उसको बहलाओ सहलाओ ताकि उसका पढ़ाई मजबूत हो जाए। कोई बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो किसी सब्जेक्ट में, हम उनको क्लास करवा दें कि भाई तुम ये मैं इंशाल्लाह आपको ये पढ़ा दूंगा, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, उस बच्चे को पक्के से पक्के बनाओ ताकि इस उम्मत के अच्छे मददगार पैदा हो जाएं। तो हम पढ़ाई में हमारे बच्चे सुस्ती ना करें, इसकी आपको फिक्र करनी है, करोगे इंशाल्लाह। और चौथी आखिरी बात जो है वो हमारे जिन असातिज़ा से और स्कूलों से हम पढ़ते हैं उनके साथ हमारे बच्चे बाअदब रहें, उनके साथ बेअदबी ना करें। क्यों? कि जो बाअदब होते हैं वो नसीब वाले होते हैं, जो बेअदब बन जाते हैं वो बदनसीब हो जाते हैं। तो हमारे स्कूल की भी इज्जत हो जाए, हमारे असातिज़ा की अज़मत हो, हमारे दरसगाहों की इज्जत हो, जिन किताबों से पढ़ते हैं उसकी भी अज़मत हो, ताकि अल्लाह के वहाँ हम बाअदब शुमार हो जाएँ। और अरबी में कहा, फारसी में कहा होता है बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अक्सर कॉलेज का माहौल बेअदबी क्या होता है, कोई किताब यूँ फेंकता है, कोई यूँ करता है, कोई उस्ताद के साथ बदतमीज़ी करता है। हमारा एक भी बच्चा उस्ताद के साथ बदतमीज़ी ना करे, एक क्लास के साथ बदतमीज़ी ना हो, दर्जों में बदतमीज़ी ना हो, किताबों के साथ बदतमीज़ी ना हो, ताकि इन सब की दुआएं इनको मिले। करोगे इसके फिक्र, और छुट्टी के दिनों में इंशाल्लाह ये फिक्र लेकर हम खुद जाएंगे और पूरी दुनिया में इस फिक्र को जिंदा करेंगे। इसलिए छुट्टियों में कहाँ जाना है बोलो, अल्लाह के रास्ते में। इस मजबे में जो इस साल फारिग हो रहे हैं पढ़ाई से, वो तो तय कर लो कि इंशाल्लाह हम पहले 4 महीने लगाएंगे, उसके बाद अपनी अपनी जॉब और अपनी सर्विस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इस साल कौन कौन फारिग हो रहे हैं जरा उठाओ भाई, माशाल्लाह कौन कौन फारिग इस साल हो रहे हैं, माशाल्लाह जिसकी पढ़ाई पूरी हो रही है माशाल्लाह। तो आप लोग तो सब तय कर लो कि इंशाल्लाह पहले 4 महीने लगाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो खड़े भी हो जाओ माशाल्लाह, खड़े हो जाओ, वाह 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 वाह, जल्दी जल्दी देखो अजान का वक्त करीब है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनों की इस साल पढ़ाई पूरी हो रही है वो सब तय कर लो, जिसकी पढ़ाई पूरी हो रही है माशाल्लाह। देखो यहाँ जाओ मेरे पास आ जाओ सब भाई, यहाँ जाओ, ओ भाई ओ भाई ओ चश्मे वाले बुजुर्ग यहाँ जाओ भाई, ये एक तरफ बैठ जाओ, यही इस कोने में चले जाओ। देखो कब पढ़ाई पूरी हो रही है और कब जिसकी पढ़ाई पूरी हो रही है वो आ जाओ। अच्छा भाई, अच्छा मेरी दूसरी बात सुनो भाई, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही लेकिन इस साल इंशाल्लाह उनका बड़ा वैकेशन आने वाला है चिल्ले का, तो इंशाल्लाह साल भर हमने स्कूल में दिया है तो इंशाल्लाह छुट्टी के दिन हम इंशाल्लाह चिल्ले में देंगे, दोगे इंशाल्लाह? किसका किसका लंबा वैकेशन हो रहा है जरा बताओ, माशाल्लाह। अच्छा आप लोग खड़े भी हो जाओ फिर, वाह भाई इंशाल्लाह हम चिल्ला देंगे, माशाल्लाह वाह 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 वाह, जल्दी जल्दी भाई। ओ भाई मैंने बातें करने को नहीं कहा, ओ भाई भाई मैंने बातें करने को नहीं कहा, ओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो कोई जाए नहीं भाई, पीछे बच्चे दो गए, देखो ऐसा ना करें। अच्छा भाई देखो आप मुझी भाई के पास वहाँ चले जाओ भाई, देखो यहाँ चले जाओ भाई, यहाँ चले जाओ भाई, ओ भाई आ जाओ जल्दी जल्दी भाई, जल्दी चलो, देखो यहाँ भाई इस कोने में चले जाओ भाई, जल्दी से चलो, माशाल्लाह वाह 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 भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो। ओ भाई मोबाइल वाले आगे बढ़ो, आ जाओ वहाँ बैठ जाओ भाई, बैठना शुरू करो, बैठना शुरू करो भाई, चलो भाई चलो जल्दी से भाई, बीच में खड़े रहकर बातें ना करो, हमें दूसरे बच्चों की तश्कील कर रही है। ओ भाई ओ भाई ओ बच्चे ओ प्यारे बच्चे भाई, चलो जल्दी भाई, ये कौन बीच में लेकर खड़ा है? ओ भाई माली साहब, ए माली साहब इनको जाने दो ना, अभी बीच में आप लेकर खड़े हैं भाई, जाने दो इनको, आ जाने दो भाई, दूसरे बच्चे मेरा करीब आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ वाह वाह, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो आपकी बड़ी छुट्टियां नहीं होने वाली है, छोटी छुट्टियां होगी, तो छोटी छुट्टियों में तो जाओगे, जितनी छुट्टी मिले इतना चले जाना, ठीक है? तो चलो आपके भी नाम लिख लो, कब छोटी छुट्टियां होगी और आप कब जाओगे वो लिखकर हमको दे दो, ठीक है? यही बैठ जाओ, पांच पांच के टोले बना दो, पांच पांच के हल्के, कि मेरा ये नाम है, मैं फलां गांव का हूं और मैं फलां वक्त में जाऊंगा भाई,
तो नाम रखोगे तो हम जाओ पड़े।